تفسیر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 141 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات, اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات جو چڑھائے جاتے ہیں چھتوں پر اور جو نہیں چڑھائے جاتے چھتوں پر. کیا مطلب؟ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا. کون؟ اللہ کی ذات, جس کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے. آیت کا آغاز واو سے ہو رہا ہے, تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے اس سے پچھلی آیتوں میں, کہ پیچھے جہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, اتنی اس کی خوبیاں, اتنی اس کی قدرتیں, لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین اپنی اولادوں کو اپنے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے اور اپنی اولادوں کو نت نئے طریقوں سے قتل کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے خرچ کے مختلف طریقے بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ بتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے تو اس کائنات کو پیدا کرنے اور بنانے میں کسی سے کچھ نہیں مانگا. وہو الذی, واحد ہے یہ, وا اور ہوا وہ, الذی وہی. تثنیہ کر لیں کہ چلے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہے تو کیا ہونا تھا؟ وہو الذانی, دو لوگ. والذی آ جاتا, ہاں نہیں کچھ بھی نہیں, وہ واحد ہے. قل ہو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی بنائی ہوئی کائنات, اسی کے اندر سے فصلیں جب اگیں, جب انہی جانوروں کو جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اسی کا جب حصہ نکال لیں, تو اللہ کے ساتھ کچھ اوروں کو شریک کریں؟ یہ ان کی خوش فہمی ہے, ان کی غلط فہمی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا تذکرہ ہے, کیونکہ جب تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین نہیں ہوتا, تب تک وہ اس کے مالک ہونے کا بھی صحیح طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ پین میرا ہے, یہ میرا ہے, میں اس کی اونر ہوں, یا میں نے اس کو بالفرض بنایا ہے, اگر آپ اس چیز پہ یقین نہیں رکھیں گے نا, تو آپ کبھی بھی اس کے استعمال سے پہلے مجھ سے اجازت لینا یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت مجھ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کسی کو دے دیں, آپ کیا کریں, آپ کے پتہ نہیں ان کا ہے کہ نہیں, کسی کا ہوگا کسی کا نہیں. تو بالکل یاد رکھیے کہ جب توحید ربوبیت کے اندر شک آ جاتا ہے, جب لوگ اللہ کی ذات کو ظاہری زبان سے تو بولتے ہیں, مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, لیکن وہ اقرار صرف ایک رسمی قسم کا اقرار ہوتا ہے, تو یہ اقرار شرک کو بند نہیں کرتا. شرک کے کچھ نہ کچھ دروازے اس کے باوجود کھلے رہتے ہیں. وہ تو بتوں کے نام پہ اپنی مال اور اسباب اور ان کے کچھ حصے لگاتے تھے, ہم نے تو آج اپنی پوری کی پوری زندگیوں لگائی ہوئی ہیں اور اس طرح کے کام بعض دفعہ کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہو رہا ہوتا کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں کتنے مغضوب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں اپنے شاہکار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کچھ پیدا کیا. انشا کا لفظ نشا سے ہے, نون شین حمزہ اس کا روٹ ہے. انشا مین ہم نے کیا, اللہ نے بنایا, اٹھانا. نشو و نما کا جو لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے, کسی کو نرش کرنا, انگلش میں یہ کسی لفظ کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو میری اس کائنات کو, دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس کی قدرت کاملہ کا یقین ہے دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو ذرا غور تو کرو, باقی چیزوں پہ تو غور کرتے ہو, اس وقت ذرا سا نباتات پہ غور کر کے دیکھو کہ یہ کہاں سے آئے. جناتن کا لفظ جو ہے یہ جنتن کی جمع ہے, جیم نون نون اس کا روٹ ہوتا ہے, پیچھے بہت دفعہ ہوا. کچھ روٹ جان کے میں بار بار بولتی ہوں تاکہ سن سن کے آپ کے کان اتنے عادی ہو جائیں کہ پھر وہ اس کے اندر غلطی کبھی نہ کھائیں. باغات مراد ہیں, اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں باغات ہیں اور ایک گارڈنز کا ایک تصور آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بنائے باغ, معروشاتن اور غیر معروشاتن, دونوں لفظ کا روٹ ایک ہی ہے, عین رو شین. عرش کا لفظ اسی سے ہے, عرشا بلند ہونے کو کہتے ہیں. تو معروشات کا معنی ہوتا ہے اٹھانا, بلند کرنا, کسی چیز کا اٹھان. اب یہاں اصل میں بیلوں کی بات ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں, کچھ درختوں پہ سبزیاں پھل اگتے ہیں تو کچھ بیلوں پہ اگتے ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پودوں پہ اگتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ اللہ کی شان ہی کا ایک اظہار ہے. جیسے انسانوں میں مختلف قد کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف جسامت کے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بھی مختلف قسم کی تخلیقات ہیں, مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. کہیں دیکھیں تو اونچے اونچے کھجور کے درخت ہوتے ہیں, کہیں دیکھیں تو گندم کے سٹے ہیں, लहलहाते, कोई छोटे, कोई एक रंग के, कोई दूसरे रंग के, कोई एक दाना, कोई दूसरा दाना। इसी तरह यहाँ मारुशात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया उन बेलों के लिए जो छतों पे चढ़ जाती हैं। लफ्ज बेल को तसव्वुर में लाएं तो आप देखेंगे कि दो तरह की बेलें होती हैं। एक वो होती हैं जो ज़मीन पे फैलती हैं, मसलन खरबूजे की बेल, कद्दू की बेल, भिंडी तोरी का तो शायद पौधा होता है या क्या होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो ज़मीन पे फैलती हैं उसके अंदर बास दफ़ा इस किस्म की बेलें होती हैं कि जो मोस्टली सब्जियों की तरह की होती हैं, या फल है, बड़े बड़े तरबूज है, नीचे फैल गई और उसी के अंदर सब्जी या फल लग जाता है। इसी तरह एक दूसरी किस्म की बेलें होती हैं जो ऊपर को उठती हैं, उसको ज़रा सा कद उसका जब निकलता है तो धागे के साथ या किसी चीज़ के साथ ऊपर बांध देते हैं तो वो दरख्त है तो दरख्त पे चढ़ जाती है, नहीं है पास तो किसी बार दफ़ा दीवार पे चढ़ाई जाती हैं, और एक वक्त आता है कि फिर ऊपर ही जाल बुन के उसकी छतें बन जाती हैं, मसलन अंगूर की बेल। अब आप ज़रा इसी दो चीज़ों पर तवज्जो करें तो आपका दिल अंदर से ऐसे झुकेगा कि आपका सजदा करने को दिल चाहेगा। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर तरबूज की बेल छत पे चढ़ी होती और ऊपर से इतने मोटे मोटे तरबूज लटक रहे होते, क्या हाल होता? किसी के भी सर पे गिर सकते थे ना, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको करने की। कद्दू कोई ख़तरा नहीं मिट्टी से, उसको ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं। इसके बरक्स आप सोचें कि अगर अंगूर की बेल ज़मीन पे हो कितने नुकसान हो सकते थे, मिट्टी लग जाती। कई दफ़ा ऐसी जगह बंदा होता है कि उसको धोने का मौका ही नहीं मिलता, फिर भी झाड़ के खा लो, और अगर वो मिट्टी में लिप रहे होते तो कैसे खाते? धोने में शायद मल मल के धोने में उनका सारा जूस निकलता, कीड़ा लग जाता। यानी जो अल्लाह की ज़ात है, आप देखिए कि इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है कि बंदा गूंगा हो जाता है इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह की कुदरत और उसकी चीज़ों के आगे, कि उसको पता है कि किसको मारूशात, किसको छतों पर चढ़ाना है वगैरह मारूशात, और किसको सिर्फ नीचे ही फैलाते जाना है। कौन करेगा ये किसका फैसला? क्या अंगूर की बेल ने ये कहा कि मैं बड़ी थी, मैं बहुत आला हूँ, इसलिए अल्लाह ने देखा मुझे ऊपर चढ़ा दिया? और कद्दू करेले की बेल ने कभी ये कहा कि हाय हाय मुझे तो ज़मीन पे मार दिया, लोगों के पाँव में आ गई? नहीं, जिसको ऊपर किया वो उस पर खुश है, जिसको नीचे रखा उस पर खुश है। तुम भी ज़रा अल्लाह के इस फैसले को कबूल तो करके देखो। यही असल में इस्लाम है। इस कायनात का इस्लाम क्या है कि अल्लाह ने जिसको जो मुकाम जो मर्तबा दिया वो उसी पे राजी और उसी पे खुश है, लेकिन इंसानों का हाल क्या है कि वो उस मुकाम पे राजी नहीं होता जिसको अल्लाह ने दिया। ये कायनात हमें ईमान बिल कदर, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, ईमान तकदीर पर लाना और अल्लाह की रज़ा पे राजी रहना सिखा रहा है कि तुम इंसान होते हुए भी अपने आप को देखो। फिर आप देखिए साथ ही वन नखला, और नखल खजूर के दरख्त को कहते हैं, खजूर को तमर कहते हैं अरबी में, और खजूर जिस दरख्त पे लगते हैं उसको नखल कहते हैं। कभी कभी फिर इसको खजूर के लफ्ज़ के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। सूरह नखल भी एक है आगे जाके, लेकिन वो दूसरी नखल है, वो शहद की मक्खी। सिर्फ एक हा का फ़र्क देखिए तो मानी बदल जाता है। फिर वह ज़रा और खेतियाँ, ज़रा ज़रा तुन से है, ज़रात का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, इसी से ज़ारे किसान को कहते हैं अरबी में। हर किस्म की खेती के लिए ये लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। फिर मुख्तलिफन उकुलुहु, मुख्तलिफ हैं उसके फल। उकुल जमा है किसकी, बताइए क्या होगा ये लफ्ज़? अब देखिए कि कुल का लफ्ज़ होता है ना खाओ, अकलु शर्फ होता है, तो उकुल यहाँ जमा है किसके लिए, फल के लिए। यानी अल्लाह ताला ने फलों के लिए जो लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल किया उसमें फवाकेहा, फाकेहा तो उनकी जमा है, फिर समरा समर, और यहाँ पे जो लफ्ज़ होगा ये उकुल है। ये मुख्तलिफ किस्में हैं। मसलन आप देखिए कि फल के लिए जो लफ्ज़ आता है फवाकेहा, ये सिर्फ फ्रूट्स के लिए आता है जिसको आप फल कहते हैं उर्दू में, लेकिन समर जो होता है ये फल के लिए भी आता है, और उसके अंदर फिर आपको कुछ और चीज़ें भी है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत मारूफ जुमला है, मेहनत का फल, मेहनत का समरा, औलाद इंसान का समरा होती है, तो किसी भी कोशिश के बाद हासिल होने वाली चीज़। लेकिन यहाँ उकुल खाने की चीज़, यानी ख़ास तौर पे वो हिस्सा जो खाया जाता है। व जैतूना और जैतून, व रुमान और अनार, अल्लाह अकबर, कैसे हैं ये? मुतशाबिहन कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। मसलन क्या मिलते हैं? आप देखिए कि जैतून और अंगूर पड़ा हो साथ साथ, तो दोनों में शुबा लग जाता है। जब तक पकड़ के ना देखें, खा के ना देखें, दोनों सब्ज रंग के भी होते हैं और कभी कभी दोनों काले भी होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं, बाज दफ़ा छोटे साइज के भी होते हैं, बाज दफ़ा बड़े साइज के भी होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुछ तो मिलते जुलते हैं और कुछ गैर मुतशाबिह, कुछ गैर मिलते जुलते हैं, थोड़े मिलते हैं। मसलन इसमें तो बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे आम अंगूर से नहीं मिलता, कीनो जो है वो सेब से नहीं मिलता। कहा ये सब कुछ क्या बता रहा है, गौर करो। इस कायनात में अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया। तुम क्यों दूसरों के ऊपर रश खाते हो, क्यों उनको देख के चलते कुड़ते हो, क्यों तुमने खूबी का मरकज सिर्फ किसी दूसरे को समझा और तुम हर वक्त जलते और कुड़ते रहते हो कि मुझे अल्लाह ने क्या दिया और क्यों दिया। अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको जहाँ खड़ा कर दे उसकी मर्ज़ी। एक लफ्ज़ बच्चे बड़ा बोलते हैं, मेरी मर्ज़ी, आपने ये क्यों किया, मेरी मर्ज़ी। अब वो बच्चा जो होता है ना, वो तो ये जुमला कहे तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन जब इतना बड़ा इंसान ये जुमला बोलता है तो असल में फिर यहीं से शिर्क के रास्ते खुल जाते हैं। हमारे लिए अभी आयत के इतने हिस्से में अमल की बात क्या है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, अपने मुकाम को पहचानें। कोई ऊपर चढ़ा हुआ अच्छा लगता है, कोई खड़ा हुआ अच्छा लगता है, कोई बैठा हुआ अच्छा लगता है। इस कायनात ने यह सबक दिया कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करता रहे तो निज़ाम अच्छे होते हैं, और जहाँ बैठने का हुक्म था वहाँ ना बैठे, किसी और जगह बैठ जाए, जहाँ से उठने को कहा जाए वहाँ से ना उठे। तो वो असल में सिर्फ उठना या बैठना ही नहीं होता, वो एक रवैया होता। यही चीज़ इस चीज़ को डिफाइन करती है कि बाद में इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना कुरान पाक को ले आता है। बस दफ़ा में अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ जाता है कि जो हम करना नहीं चाहते वो करने का हुक्म हो जाता है। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, कहा जाता है मत करो, कोई बुरी लग रही होती है, कहा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि अस्सा में तुम्हारे लिए क्या है, कहा बहुत फ़ायदे हैं, बकरियाँ झाड़ता और दिस एंड दैट, कहा फेंक दो। हम जैसे होते तो अकड़े रहते, हिलते भी ना अपनी जगह से। इसलिए हर एक अपना जायज़ा ले। बस दफ़ा आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कब आएगी, जब वो खुद उस दर्जे पर आएंगे या उनके बच्चे उनको झुटलाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाए, कभी ज़िंदगी का कोई मामला आ जाए, अल्लाह का हुक्म और डूज एंड डोंट्स का या अल्लाह की बात कहने कहलाने वालों का, अगर उस बात को सुन के आपके जहन में रिएक्शन आ जाता है, आप अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, तो याद रखें कि अभी अंदर वो ज़मीन ही नहीं तैयार हुई जिस पे कुरान के बीच लग सके। ऐसे लोग दिन ब दिन और स्टबन होते हैं और हर चीज़ को वो अपनी अकल पे परखते हैं, वो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो समझते हैं हमारा फैसला ठीक है, हमारा ये नहीं सही। ज़िंदगी में बहुत मौके पे इंसान को अल्लाह ताला के मामले में यही रवैया अख्तियार करना पड़ता है कि अल्लाह जो आपने किया वही दुरुस्त है। आज से हम अपनी ज़िंदगी का असूल बना सकते हैं, पौधों और फसलों और खेतों पर गौर करके अपने आप को पहचाने। अब देखिए कि बेल कितनी नरम है ना, यहाँ पे मारूशात का लफ्ज़ आया है, और बेलों के लिए ख़ास तौर पे बेल, और बेल कहते ही ग्रीन वेजिटेशन को है। इसके मुकाबले में अब देखिए कि दरख्त है, जहाँ नखल की भी बात आ गई खजूर की, दोनों दो मुख्तलिफ रवैयों को साबित करती हैं। दरख्तों के अंदर स्टैंड लेना है, खड़ा होना है, इस्तकामत है, और बेलों के अंदर आजजी है, तवाज़ो है, झुकावा होना है। और आप जाके किसी किसान को पूछ लें, सब्जी वाले से पूछ लें कि ज़्यादा सब्जी ज़्यादा फल किस जगह से आता है, बेलों से आता है। दरख्त तो दो चार फलों के होते हैं बड़े बड़े। तो लिहाजा अल्लाह सुभान व तआला ये बात कह के कि मैंने देखो तुम्हारे लिए बनाया, और मैंने बनाने के बाद ये नहीं कहा खबरदार हाथ लगाया तो ठीक कर दूंगा, नहीं, खाओ अब, खुलू मिन समरी ही, खाओ उसके फल में से। कब? इज़ा अस्मरा, जबकि उसमें फल आए, यानी बेसब्रे ना बनो, कच्चा ही ना तोड़ के खाने लग जाओ, जब फल आ जाए पूरी तरह पक जाए, उसके अंदर रस भर जाए, उसकी खटास ख़त्म हो जाए, फिर तुम उसको खाओ, और इससे पहले ना खाओ। इससे क्या सबक मिल रहा है? सब्र सीखो, वक्त से पहले ना किसी काम को करो, आजीला का शिकार ना हो जाओ। दुनिया क्या है? आजीला। असल में जो लोग आखरत की कीमत पे इस दुनिया को हासिल करना चाहते हैं वो आजिला के शिकार हैं, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جلد باز نہ ہو جاؤ کہ سارا فائدہ دنیا میں لینا ہے، تھوڑا سا تو انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں نا، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اسی طرح کائنات میں جو آیات ہیں یہ بھی ہمارے تدبر کے لیے ہیں۔ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو قرآنی آیات کہتے ہیں، سب جانتے ہیں 6666 آیات ہیں۔ اسی طرح جو کائنات میں جو چیزیں جس پہ ابھی ہم غور کریں ان کو آفاقی آیات کہتے ہیں، آفاق افق سے۔ اس وقت اصل میں جو آیت ہم قرآن کی پڑھ رہے ہیں، دیکھا جائے تو یہ آیتیں قرآنی تو ہے ہی، لیکن اصل میں یہ ہمیں آفاقی آیات پہ غور کرنا سکھا رہی ہے۔ قرآنی آیات کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو پہلے سے مہارت چاہیے ہوتی ہے، مثلا پڑھنا آتا ہو، ہاں اس کو تھوڑا بہت اس کا سینس ہو، پھر اردو آتی ہو جس طرح کہ ہم اس وقت اردو میں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آفاقی آیات ایسی ہیں ایک لفظ نہ کوئی بول سکے، گونگا بہرا، صرف اس کا دل زندہ ہونا چاہیے، تو وہ ایک چکر لگا کے آئے گا شہر کا اور وہ کہے گا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآنی آیات کو سیکھنے کے حریص ہیں، بحثیت مجموعی دیکھ لیجیے امت کا حال۔ چلیے یہ تو بورنگ لگتا ہے، اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، یہ بتائے کہ آفاقی آیتوں سے سبق کتنے لینے والے ہیں۔ اس دنیا سے ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے صرف بس ہم آئے کھانے اور پینے کے لیے تھے، تو جہاں سے گزریں غور کریں، اللہ کی خلاقیت کو دیکھیں گے، آپ کا دل جھکے گا، پھر سر سجدوں میں جائیں گے۔ اب یہاں یہ جو بات کی نا اعزاز مارا، اس کے اوپر پیچھے بھی بات ہو چکی آپ کو یاد ہوگا، ایمان جو ہوتا ہے نا اس کا بھی پھل پکتے پکتے ہی پکتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت باتیں سن چکے ہوتے ہیں لوگوں سے، ایمان کا ذائقہ بڑا میٹھا، ایمان والے کی زندگی ایسی، ایمان ایمان ایمان، لیکن یاد رکھیے کہ ایمان کا پھل ہو یا صبر کا پھل ہو، اس میں مٹھاس آنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بیچ مرحلے کا جو ایمان ہوتا ہے یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کو چکھتے ہی ایک دم زبان کھچنے لگتی ہے۔ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے کوئی ایک دم خوش نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ آپ کو دیکھ کے تیوریاں بھی چڑھائیں گے، لیکن جو ان وقتوں پہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے کہ ایک اور چھوٹی سی چیز دیکھیے گا کہ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں خشک ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں اور کھانے کے قابل بنتے ہیں۔ کچھ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو بالکل پہلے جھلی جھلی ہوتی ہیں، لیکن جو جو پکتے جاتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کے اندر جوس سورج کی روشنی میں آتا ہے، جو پھل جتنا سورج کی روشنی کے اندر پکتا ہے میٹھا ہوتا ہے، اور جس کو اس سے ہٹا کے کسی آرٹیفیشل ماحول میں رکھے وہ پک تو جاتا ہے لیکن کھٹا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں کبھی انگور کھٹے ہوتے ہیں کبھی میٹھے ہوتے ہیں، کبھی آم کھٹے ہیں کبھی میٹھے ہیں کبھی پھیکے ہیں۔ یہاں سے بھی ایک سبق دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا کہ قرآن پاک یہ بھی ایک سورج کی روشنی کی طرح ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ سورج تو سب کو دکھتا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا ہے، لیکن اگر قرآن کو ایک سورج بنا کے دکھائے تو یہ ایک سورج تو کیا پورے نظام شمسی کو چھپا دے، یہ ہدایت کا سورج اتنا بڑا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کا سورج بھی کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر جوس لاتا ہے، رس لاتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ان کا اخلاق سنورتا ہے، ان کا کردار سنورتا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک سنورتی ہے، اور کچھ کا معاملہ پہلے سے بھی الٹ ہو جاتا ہے، اور سٹبن ہو جاتے ہیں، اور تکبر، اور بڑے بنتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور جو بندہ اللہ کی خلاقیت پہ غور کرے گا پھر وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اب یہاں تک تو اللہ کی ذات نے ہمیں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے دی، اور اب آگے کیا کہا، وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ، اور دے دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن۔ پھل آ گیا، سبزی آ گئی، کھیتی پک گئی، سب کچھ ہو گیا، اب کیا سارا پھل خود کھا جاؤ، جو دیا ہے اللہ نے وہ تم سارا خود لے جاؤ یا کچھ اوروں کو دو؟ نہیں، کچھ اس کا حق دو۔ کہو سے مراد پیچھے والی چیزوں میں سے ہی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان میں سے جن کا پھل ہو، اور اسی طرح حق کا ہو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حساد ہی کا جو لفظ آ رہا ہے، حسدہ سے، ہا سواد دال، आजकल आप इसको बहुत देख सकते हैं आते जाते, और वो क्या है कि फसल का कटना। बास लोग कहते हैं कि यहाँ हक का हु से मुराद उशर है। आप पीछे सुन चुके सूरत बकरा में कि जिस तरह आम माल जो होता है उसके ऊपर ज़कात होती है, लेकिन जो ज़मीनों के साथ काम करते हैं, ज़मींदारा करते हैं, उनके ऊपर उशर वाजिब होता है, जो उस कटाई का या उस फसल का 10वां हिस्सा होता है और कुछ सूरतों में 20वां हिस्सा होता है। पीछे हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ एक बहुत ही प्यारा सबक सिखा रहे हैं, और वो क्या कि जिस दिन फल आए तो फल देने वाले को ना भूलो। जब फसलें कटती हैं उस दिन किसान की जिंदगी की खुशी का दिन होता है, और जितने पेगन कल्चर हैं, मुशरिकाना कल्चर है, उनके अंदर फसलों की कटाई के साथ ही जश्न का रिवाज है। मसलन जश्ने बहारा आपने नाम सुने होंगे, बसंत का नाम सुना होगा, और बास दफा कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि वहाँ खास तौर पे ऐसे वक्तों में अपनी देवियों और अपने बुतों के नाम पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ऐसे मौकों पे जब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत दे तो तुम उस नेमत देने वाले को मत भूलो, उसका हक दो। इसका ताल्लुक सिर्फ जमीन से नहीं हो सकता, हर नेमत से। जिस दिन पे मिले कुछ निकालो उसमें से, चाहे 10-5 ही निकाल दो। जिस दिन घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा मिला कुछ निकाल दो। कहीं से कुछ मिल गया अपना हक होते हुए, या तोहफे में, या इनाम में, या किसी सूरत कुछ तो कुछ अल्लाह के हक में दो। क्योंकि खुशियों में खुशियां देने वाले को भुला देना ये बहुत बड़ी नाफरमानी होगी। इसीलिए फरमाया वाला तुसरिफो, और देखो इसराफ ना करना। और इसराफ को मेरा हाल है वो लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं जिन्होंने दौरे कुरान में 27वां पारा पढ़ा था। मेरा ख्याल, अगर मैं भूल नहीं रही तो 27वें पारे का थीम ही कितनी किस्में भूल जाते हैं, अल्लाह ताला की बात को याद नहीं रखते, और इस जिंदगी में अपनी आवाज का गलत इस्तेमाल, अपने चलने फिरने का गलत इस्तेमाल, अपने रुपए पैसे, अपने माल, अपने वक्त, नेमतों का इसराफ करते हैं। तो कहा मुसरिफीन में ना हो जाओ, क्योंकि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो मुसरिफीन को पसंद नहीं करता। अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसको एग्जेजुरेट करने वाले पसंद नहीं, जिनको मुबालगा करने वाले पसंद नहीं, जो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं वो पसंद नहीं है। यहाँ अगर इस आयत के साथ देखें तो इससे मुराद है कि वो लोग जब अपनी फसलें जब काटते हैं तो उसमें से गरीबों का ना दें। एक वाकया आता है कुरान पाक में सूरत नून के अंदर, सूरह कलम भी कहते हैं, सूरत नून भी कहते हैं, 29वें पारे में। तो उसमें अल्लाह ताला ने इस इसराफ की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि एक शख्स था, उसका बहुत अच्छा बाग था, बहुत फल आता था। उसकी आदत क्या थी कि जूं ही फल पकता तो उसके बाद वो उसमें से कुछ मिसकीनों को देता। हुआ क्या कि लोगों को आदत हो गई, जब फसल कटनी होती पहले से आके बैठे होते बेचारे गरीब, तो वो जब फसल काटता तो उसमें कुछ देता। अल्लाह को ये उसका अमल इतना प्यारा लगता था कि उसकी फसल में बड़ी बरकत थी, उसका बाग जो था बहुत फलता था। बेटों को ख्याल आया बाप के मरने के बाद कि बाप कैसा ना समझ था, किस अपनी कमाई का इतना हिस्सा गरीबों को दे देता था। तो उन्होंने एक चाल चली कि ऐसा करेंगे कि आ जाएंगे वो गरीब तो फिर तो इनकार करना बुरा लगेगा। तो ऐसा करते हम रातों रात जाके बाग को काट लेंगे और गरीबों के आने से पहले ही उसको समेट लेंगे। बस ये दिल की नीयतें थी, इरादे दिल के थे। जब आधी रात को निकले तो देखा कि वहां कोई है ही नहीं। कहने लगे हम तो रास्ता भूले में नहीं, बल नहनु महरूमून। पता चला कि रातों रात आग का भगोला आया, अल्लाह ने बाग को जला दिया, और फिर वहां उनको एहसास हुआ कि हमने गलती की। तो लिहाजा जिंदगी में अपने रवैयों को चेक करने की जरूरत है। यहाँ अगर इस आयत को हम एक हल्के से डिफरेंट एंगल से देखें कि जिस तरह किसान की खेती उसकी मेहनत जो उसका फल होता है, इसी तरह हम इंसानों की जो औलाद होती है ना, वो भी हमारी मेहनत या उम्मीदों का मरकज होती है, उसके ऊपर बड़ी नजरें लगी होती हैं। तो यहाँ बताया गया कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की कोई खुशी नसीब हो, कोई कामयाबी, कोई उनकी दीन दुनिया की कामयाबी, कोई उनकी ग्रेजुएशन, कोई शादी, कोई मंगनी, तो उस वक्त भी वला तुसरिफो, इसराफ ना करना। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारा मामला यह है कि जब तक कुछ नहीं मिला होता तो कहते हैं दबे रहते हैं, जरा दबे दुबे होते हैं, और जो ही कुछ मिलता है तो उस वक्त हमारी हालत बिगड़ जाती है। अगर मैंने और आपने अपने सच्चे दीन को देखना है ना, कितना ईमान है, कितना तकवा है, اور کتنی اللہ کی حکموں پہ چلتی ہوں. تو آپ اس موقع کو دیکھیں جب آپ کے کسی بچے کی شادی ہے. آپ کی اپنی شادی پہ تو بعض دفعہ انسان کا بس نہیں چلتا, لیکن چل سکتا ہے اس وقت بھی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھا جائے. یہاں جو لفظ آیا ہے حسادی ہی, تو حساد کہتے ہیں کھیتی کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کا وقت, ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات ہے اس کے اندر, سورج چونکہ مکی ہے تو بعض کہتے ہیں کہ مکی صورتوں میں تو احکامات نہیں آئے تھے زکوٰۃ کے اور عشر کے. تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پہلے ذہن سازی کر دیتے ہیں لوگوں کی اور اس کے بعد پھر اصل حکم آتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہی حکم موجود ہے جس کو انسان دیکھ سکتا ہے.